आहान ने कहीं ना कहीं अरमान की गर्दन की ओर बड़े ध्यान से देखा था। अरमान को एक बार फिर से अजीब तरह से गर्दन घुमाकर आस्था को देखते हुए देखकर उसका दिल एक बार फिर आशंकाओं से भर गया था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और फिर अरमान को देखकर बोली,
भैया आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, जल्दी चलिए देखते हैं क्या हुआ है।
उसने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और अरमान का हाथ थामकर उसे भी मिनी हॉस्पिटल की ओर लेकर जाने लगा। वहीं इस वक्त दादाजी, अभिमान जी, वसुंधरा और वीर सभी के सभी वहां पहुंच चुके थे। पूरा परिवार एक साथ जमा हो गया था। जैसे ही उन्होंने वहां जाकर देखा, प्रियंका ने अपना सिर घुटनों में छुपा रखा था और वो जोर जोर से रो रही थी। नानी माँ और आस्था, रौनक, राधिका, वंशिका उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका को इस तरह टूटा हुआ देखकर कहीं ना कहीं दादी माँ का दिल भी पूरी तरह भर आया था और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी आस्था ने जल्दी से दादी माँ को संभाला और उन्हें शांत रहने का इशारा किया। फिर वो सीधा प्रियंका के पास गई और बोली, प्रियंका दीदी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? शांत हो जाओ दीदी, मेरी बात सुनो। इधर देखो प्रियंका दीदी, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त आप हमारे साथ घर पर मौजूद हैं और यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए आस्था लगातार प्रियंका को शांत करने की कोशिश करने लगी थी और उसे जितना हो सकता था उतना कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। वहीं पूरा परिवार इस वक्त हल्की सी नम आंखों के साथ ये सारा दृश्य देख रहा था। रश्मि की हालत तो वैसे ही ठीक नहीं थी। राधिका ने रश्मि को संभाल रखा था। रौनक भी रश्मि के पास ही खड़ी थी। तभी टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे और ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखने लगे थे। कहीं ना कहीं सभी के चेहरे मायूसी से भरे हुए थे, लेकिन वहां एक ऐसा इंसान भी खड़ा था जिसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। वो बिना कुछ बोले वहां खड़ा सिर्फ और सिर्फ आस्था को देख रहा था। वो था अरमान। तभी आस्था ने भी सभी लोगों की ओर बारी बारी से देखा और उसकी नजर अचानक जाकर अरमान पर ठहर गई। अरमान की नजरों में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए उसने उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अरमान की ओर देखकर आवाज लगाते हुए बोली, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? आइए ना, प्लीज आकर मदद कीजिए और देखिए क्या हुआ है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज आकर हमारी मदद कीजिए। ये कहते हुए आस्था ने अरमान को अपने पास बुलाया और मानो आस्था की आवाज सुनते ही अरमान सीधा उसके पास चला आया। लेकिन तभी प्रियंका अचानक आस्था के हाथों को झटकते हुए चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, मुझे छूने की कोशिश मत करना, छोड़ दो मुझे आस्था, छोड़ दो। जैसे ही प्रियंका ने आस्था का नाम लिया, कहीं ना कहीं सबके चेहरों पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आ गई। सबको लगा कि शायद अब प्रियंका की यादें वापस आ गई हैं, इसीलिए उसने आस्था का नाम लेकर उसे पुकारा है। तभी आस्था भी हल्की खुशी और नम आंखों के साथ बोली, क्या आपने हमारा नाम लिया? प्रियंका दीदी, आपको हम याद आ गए, याद आ गए हम आपको। ये कहते हुए आस्था प्रियंका के हाथ हटाकर उसका सिर ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रियंका ने तुरंत ही आस्था के हाथों को फिर से झटक दिया और इसी झटके में प्रियंका के लंबे नाखून आस्था के हाथ में गड़ गए। जैसे ही अरमान ने ये देखा, अचानक उसके तन बदन में गुस्से की आग भड़क उठी। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी के शरीर को किसी के हाथों चोट खाते हुए कैसे देख सकता था? उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और आस्था को हल्का सा पीछे हटाकर तुरंत प्रियंका के पास पहुंचा और अगले ही पल उसने प्रियंका को एक झटके में डांटकर बेड से खड़ा कर दिया। जैसे ही अरमान ने यह अचानक कदम उठाया, वहां मौजूद हर इंसान अपनी जगह पर हैरान रह गया। सब हैरानी से अरमान को देखने लगे। वहीं प्रियंका, जो अभी तक पूरी तरह पैनिक में थी, अरमान के इस अचानक व्यवहार से खुद भी एक पल के लिए चुप हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तभी नानी माँ तुरंत प्रियंका के पास आई और उसे सहलाते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ प्रियंका, अब तुम अपने लोगों के बीच हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, बस शांत हो जाओ। ये कहते हुए नानी माँ प्रियंका को शांत करने की कोशिश करने लगी और प्रियंका भी अरमान के इस अचानक एक्शन से थोड़ी खामोश हो गई थी। अगले ही पल उसने सामने खड़ी नानी माँ को देखा और अचानक आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भी भर आई थीं। राधिका, रौनक और वंशिका भी नानी माँ को संभालने की कोशिश करने लगी। आस्था भी प्रियंका की पीठ थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ प्रियंका दीदी, शांत हो जाओ। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन इस पूरे वक्त अगर किसी की नजर कहीं अटकी हुई थी तो वो थी अरमान की नजर, जो सिर्फ और सिर्फ आस्था के हाथों पर टिकी हुई थी, जहां से धीरे धीरे खून निकल रहा था, क्योंकि प्रियंका के लंबे नाखून आस्था की त्वचा में गड़ गए थे और वहां गहरी खरोंच पड़ गई थी। अचानक अरमान ने आगे बढ़कर आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना किसी से कुछ कहे वो आस्था को अपने साथ लेकर वहां से बाहर निकल गया और सीधा उसे अपने कमरे में ले आया। वहीं आस्था लगातार अरमान से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली थी, अरमान जी ये क्या कर रहे हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरमान जी छोड़िए मेरा हाथ, आप क्या कर रहे हैं। वहीं अविनाश गहरी नजरों से अब तक अरमान को देख रहा था कि आखिरकार अरमान यहां कर क्या रहा है। यहां इस तरह का माहौल है, नानी मां रो रही हैं, प्रियंका के हालात ठीक नहीं है, तो आस्था को इस तरह कहां लेकर जा सकता है। कहीं ना कहीं इस वक्त अविनाश का दिमाग जोरों से चल रहा था। उसने तुरंत एंजल को इशारों इशारों में आस्था के पीछे जाने के लिए कहा। एंजल कहीं ना कहीं अविनाश की आंखों का इशारा समझ चुकी थी और वो अब जल्दी ही आस्था के पीछे पीछे जाने लगी थी। वहीं आहान एक बार फिर हैरानी से ये सारा दृश्य देख चुका था और एक बार फिर ध्रुव के कानों में फुसफुसाते हुए बोला था, यार कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है, कुछ तो ऐसी चीज है जो नॉर्मल नहीं है, आखिरकार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अब ध्रुव ने आहान की बात सुनकर उसे एक बार फिर डांटते हुए कहा था, शट अप यार, तुझे दिखा नहीं प्रियंका कितनी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। अगर अरमान भैया उसे जोर से नहीं डांटते और सबके सामने उठाकर खड़ा नहीं करते तो वो उसी तरह पैनिक करती रहती और कभी भी होश में नहीं आती। कम से कम भैया की तेज आवाज सुनकर वो होश में तो आ गई है। तो तुम्हें ये सारी चीजें अब नॉर्मल क्यों नहीं लग रही हैं। अब ये सुनकर आहान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके मन में बार बार एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अपनी उस फीलिंग को वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इसी बात का था। फिलहाल आहान थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, अच्छा अगर ये सारी बातें तेरे लिए ठीक हैं, नॉर्मल है, तो भाभी को सबके सामने से क्यों लेकर चले गए। हाँ बोल, जवाब दे। तभी ध्रुव बोला था, तूने देखा नहीं, प्रियंका की वजह से उन्हें चोट लगी है, वो जरूर उसकी ड्रेसिंग करने के लिए लेकर गए होंगे, तू ज्यादा ही सोचता है। ये बोलकर कहीं ना कहीं ध्रुव ने अंदाजा लगा लिया था। वहीं आहान उस पल के लिए चुप हो गया था। आहान मन ही मन बोला था, जितनी चीजें आसान लग रही हैं उतनी आसान है नहीं। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आहान कुछ देर के लिए खोसा गया था। वहीं दूसरी ओर अब आस्था थोड़ा सा तेज गुस्से में अरमान को देखकर बोली थी,
अरमान जी ये कैसी हरकत है, आखिरकार आप हमें सबके सामने से इस तरह कैसे लेकर आ सकते हैं। आपने देखा नहीं, इस वक्त नानी माँ को और प्रियंका दीदी को हमारी जरूरत है, आप इस तरह हमें वहां से लेकर आने का क्या मतलब है आपका। कहीं ना कहीं आस्था गुस्से से झुंझलाते हुए अरमान पर उतर आई थी। तभी अरमान बड़े ही प्यार और आराम के साथ बोला था, आफत हैरानी है, तुम सबकी परवाह करती हो लेकिन अपनी बिल्कुल भी नहीं करती। ये देखा नहीं तुमने, तुम्हारे हाथों पर प्रियंका ने क्या कर दिया है, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है और मैं इस समय इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और वैसे भी जाने अनजाने में मैं तुम्हें तकलीफ दे चुका हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी और को तकलीफ देने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं आफत, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक मेरा वही गिल्ट खत्म नहीं हो रहा है और अपने सामने मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ भला। ये बोलकर उसने आस्था को पास बैठा दिया और उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगा था। वहीं आस्था को, जो थोड़ी देर पहले तक अरमान पर गुस्सा आ रहा था, एक पन में ही सब छूमंतर हो गया। वो हल्की नम आंखों के साथ बोली थी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं हम सोच भी नहीं सकते अरमान जी, हम कहाँ ध्यान दे पाते। लेकिन ये तो मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, इसके लिए आपको हमारी ड्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमारा नानी माँ के पास होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो वैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन अरमान ने तुरंत आस्था का हाथ पकड़ लिया और बोला था, तुम्हें अगर एक खरोच भी आएगी तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। ये सुनकर आस्था को अरमान का ढेर सारा प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था, लेकिन इस बात से वो बेखबर थी कि अरमान की आंखों में प्यार के अलावा कुछ और भी था। वहीं एंजल सारी चीजें अच्छी तरह से देख चुकी थी और कुछ समझते हुए सीधा वहां से आकर उसने अविनाश को अपने शब्दों में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। अब अविनाश जैसे जैसे एंजल की बातें सुन रहा था, कहीं ना कहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदलते जा रहे थे। वो मन ही मन बोला था, मेरे लिए गौरी की खुशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में कुछ भी उससे ज्यादा नहीं। मेरी बहन ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ उसकी जिंदगी में खुशियां देखना चाहता हूँ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं।
कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अविनाश कुछ देर के लिए खोसा गया था। वहीं दूसरी ओर काफी देर तक रोने धोने के बाद जैसे ही प्रियंका का दिल थोड़ा हल्का हुआ वो शांत हो गई थी। तब तक रौनक प्रियंका के लिए एक ग्लास पानी लेकर आ गई थी। अब सभी लोग प्रियंका को धीरे धीरे हॉल में ले आए थे। कहीं ना कहीं सारी लड़कियां अच्छी तरह से प्रियंका को संभाल रही थीं और उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानती थीं कि इस वक्त प्रियंका कितनी ज्यादा डरी हुई है। वहीं ध्रुव ने धीरे से वंशिका के कानों में कहा था, मानना पड़ेगा मेरी प्रोफेसर, तुमने बहुत अच्छा एंटीडोज बनाया है। तुम्हारी इसी बनाई हुई दवा से प्रियंका की यादें वापस आई हैं। सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर कहीं ना कहीं वंशिका के गाल हल्के हल्के लाल होने लगे थे। उसने तुरंत ही ध्रुव को देखकर कहा था, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ प्रोफेसर, ये सब मेरे बाबा की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे गाइड नहीं करते तो पता नहीं मैं ये एंटीडोज बना भी पाती या नहीं। लेकिन प्रियंका दीदी को ठीक होता देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बस अब वो अपने जख्मों से और अपनी बुरी यादों से भी पूरी तरह बाहर आ जाए, तब जाकर मुझे असली खुशी मिलेगी। वंशिका की ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं ध्रुव को उसके लिए एक अलग ही तरह का फख्र महसूस हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, कहां उसे पहले वो बदतमीज लड़की डिंपल पसंद आई थी जो एक नंबर की नकचढ़ी और घमंडी थी, और कहां ये वंशिका है, एकदम प्योर गोल्ड हार्ट वाली लड़की जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। सचमुच इस वक्त ध्रुव को वंशिका पर बहुत प्यार आ रहा था। वहीं आहान दूर खड़ा ध्रुव और वंशिका की ये सारी हल्की फुल्की बातें थोड़ी थोड़ी सुन चुका था। वो तुरंत उनके पास जाकर ध्रुव को हल्का सा कोहनी मारते हुए बोला था, बस कर भाई, ड्रामा तो देख ले क्या चल रहा है यहाँ पर, और इस सिचुएशन में भी तुझे रोमांस की पड़ी है। जैसे ही आहान ने ध्रुव के कानों के पास झुककर ये बात कही, वंशिका तुरंत वहां से हटकर प्रियंका के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वहीं ध्रुव ने आहान को घूरते हुए कहा था, तेरा तो जब दिल करता है तो कहीं भी शुरू हो जाता है, और भैया अपनी बीवी से दो मिनट बात भी नहीं कर सकता। ये बोलकर ध्रुव ने आंखें दिखाई, लेकिन आहान जो अभी अभी ध्रुव की तीखी नजरों का सामना कर रहा था तुरंत इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे अचानक बहुत जरूरी काम याद आ गया हो। फिलहाल तब की अंका ने रोते रोते बताना शुरू किया कि किस तरह कुछ गुंडों ने अचानक आकर उसे घेर लिया था जब वो और वैभव शहर बाहर निकले थे। प्रियंका ने कांपती आवाज में कहा, उस वक्त अचानक कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते उन्होंने आते ही वैभव को गोली मार दी और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहां से उठा ले गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रियंका थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर बोली, बीच बीच में जब मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी लौटती थी तब मैंने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया और वहां एक अधेड़ उम्र का एक आदमी था। वो बार बार मुझे किसी नैना के नाम से पुकार रहा था। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरा नाम प्रियंका है, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। आखिर क्या कारण है अरमान के इस बर्ताव के पीछे? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।